ओम शांति। तो ये मुरली है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। इस मुरली से कुछ हम बातें निकालेंगे जो कि हमारे दैनिक क्रियाकलापों में या फिर सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का निवारण करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। तो एक ये है सिक्स थिंकिंग हैड्स। आगे क्या है? वही सिक्स। तो ये छह बातें हैं। एक टेक्निक संसार में इजाद की है जो कि अप्लाई की जाती है कि जैसे परिस्थितियां आती है उसमें क्या करते हैं। तो ये छह प्रकार की टोपियां, माना ये जो दिमाग है इसमें कौन कौन से विचार चलते हैं। परिस्थिति आती है तो क्या करना पड़ता है, रणनीति कौन सी तैयार करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे पॉजिटिव विचार चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, निर्णय हम कैसे लेते हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो इस मुरली से हमने चार परिस्थितियां निर्माण की हैं जो कि चार यहां ग्रुप बनाए जाएंगे और सबको एक एक परिस्थिति दी जाएगी और उन परिस्थितियों को हमको इन छह जो हेड्स हैं, ये जो छह चीजें हैं, इनके आधार पर हमको कैसे उनसे बाहर निकलना है और कैसे उनको अप्लाई करना है उसको पहले थोड़ा ग्रुप में डिस्कशन का टाइम दिया जाएगा 5-5 मिनट का और उसके बाद उसको प्ले करके बताएंगे आप कि कैसे उसको पार करेंगे। और उससे पहले जो छह बातें हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में श्याम भाई जी प्रकाश डालेंगे। श्याम भाई जी।
ओम शांति। तो जो पिछले ग्रुप में थे यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी की है तो उनको थोड़ा बहुत पता ही होगा सिक्स थिंकिंग हैट। तो जो ये साइंटिस्ट था प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो, उसने ये जो इन किया था 1985 में रिसर्च की थी। तो मतलब कहने का भाव जहां तक मैंने समझा यही है कि हर एक के लाइफ में जो है जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को वो किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से हैंडल करते हैं। जैसे बाबा भी हमेशा कहते हैं कि कोई भी बात अगर आपके सामने आती है तो क्या बन के सोचो, त्रिकालदर्शी बन के सोचो, है ना। तो यहां पर भी जो भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हमारे लाइफ में हम किस प्रकार से लेते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, नए नए 4-5 लोगों ने मिलकर एक नई कंपनी चालू की होती है और काफी अच्छी चल रही होती है। वो 3-4 मास के बाद में दिवाली होती है। तो जब दिवाली आता है, दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है 10-12 दिन पहले, तो उनके पास स्टॉक जो है कम होता है जो भी वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और उनके पास सप्लाई उतना नहीं है, क्योंकि नया नया उन्होंने चालू किया 3-4-6 महीने पहले और उनको कुछ इतना आइडिया नहीं है कि अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो वो जो 4-5 लोग होते हैं उसके मेन जो जिन्होंने पार्टनर्स को या जिन्होंने चालू की होती, वो आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं कि अब क्या किया जाए इस परिस्थिति में। तो एक पार्टनर जो है वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि जो सेम प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का है वो हम खरीद लेते हैं और उसके ऊपर अपने कंपनी का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा कर देंगे क्योंकि वैसे भी दिवाली का टाइम है तो लोग लेते ही हैं, तो उसमें कोई पैसे का इतना ज्यादा सोचेगा नहीं। तो अगर हम 5 के बजाय 7 रुपए में भी बेचें तो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पार्टनर ऐसा कहता है। और फिर दूसरा पार्टनर कहता है कि अगर बाहर के लोगों को मतलब कस्टमर को मालूम पड़ गया है कि हमने ऐसी चीटिंग की है तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे देखो नई नई कंपनी चालू किया और ये ऐसे दूसरे का प्रोडक्ट लेके परचेस करके अपने नाम से ये सेल करते हैं, तो हो सकता है आगे हमारी रेपुटेशन खराब हो तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं मार्केट में। तो दूसरा पार्टनर ये कहता है। फिर तीसरा पार्टनर ये कहता है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम जो वर्किंग आवर्स है हमारे 8-10 घंटे से बढ़ा के हम डबल कर देवे उसको, 15-20 दिन के लिए ज्यादा समय काम करें तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ऐसे हम इस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। फिर जो और एक पार्टनर होता है वो कहता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो घर में हमारे बीवी बच्चे नाराज हो जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई दिवाली तो सबके लिए ही, आप तो सारा समय उधर काम पे ही दे रहे हो तो हमारे साथ कब एंजॉय करोगे, हमको भी तो दिवाली एंजॉय करनी है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के उनके व्यू निकलते हैं कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए उन्होंने फिर? डबल समय करना चाहिए, घर में बीवी बच्चे नाराज होंगे तो अच्छा बाद में मन जाएंगे और तो उनका फिर आपस में ऐसे निर्णय निकलता है कि हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स है हमारे पास में, हम वर्कर्स को थोड़े 15-20 दिन के लिए टेम्पररी थोड़े ज्यादा वर्कर्स रख लेते हैं, और हर कोई जो है जो 8-10 घंटा काम कर रहा है उसके बजाय 1-2 घंटा काम बढ़ाएगा, 15-16 के बजाय जैसे 10 घंटे कर रहे हैं तो 10 घंटे के बजाय 11-12 घंटे करेंगे, और जो वर्कर्स है हमारे पास में 8-10 उसको बढ़ा के हम 15-20 कर देते हैं टेम्पररी थोड़े समय के लिए, और फिर उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और प्रॉफिट तो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वर्कर्स हमने डबल कर दिए तो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हमारा जो मार्केट में रेपुटेशन है वो तो खराब नहीं होगा और हम इस परिस्थिति को पार कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमको कैसे हैंडल करना है, तो उस प्रकार से वो इस तरह से सोच के उस परिस्थिति को पार करते हैं। तो अभी बनाए ग्रुप, तो अभी ग्रुप बनाते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं कांताबेन से, 1 2 3 4 आपको बोलते जाना है, चार ग्रुप बनाने, तो आप फर्स्ट बोलेंगे आपकी साइड वाली यहाँ पे लेफ्ट वाली बहन जी, सेकंड बोलेंगी ये, थर्ड बोलेंगे ये भाई, फोर्थ बोलेगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चालू होगा। तो नहीं आप ही हैं खाली। 2 4 अपना अपना नंबर याद रखना है, कोई भूलना नहीं कि भाई मैंने कौन सा नंबर बोला। 2 3 4 5 है ही नहीं। वो वन है। यहाँ देवेंद्र भाई 1 2 3 माता जी 4 अच्छा ठीक है, सबको करना है। ठीक है, वो पीछे वो बहन जी ग्रीन कलर ड्रेस में, 3 4 5 है ही नहीं। 1 2 3 4 तो अभी जब वन वाले हैं सब एक साइड में आ जाए, वन वाले सब एक साइड में आ जाए, कौन बोला ना उनको, बोला ना 3 4 हो गए ना, सब वन वाले यहाँ पे लेफ्ट में आ जाए भले, 2 वाले राइट में आ जाए, 1 वाले यहाँ पे लेफ्ट में, हाँ ये देखे फिर इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर। एक नंबर यहाँ पे लेफ्ट में आ जाए जो नीचे बैठ सकते हैं, अगर ऊपर जगह नहीं तो नीचे भी बैठ जाए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले यहाँ पे, 3 नंबर वाले यहाँ पे, अरे ये 1 नंबर में इतने लोग कैसे हो गए, क्या माना, 4 को पीछे, 4 को पीछे विनोद भाई के पास में, थर्ड वाले कौन कौन है,
तो इसमें अभी एक क्या ग्रुप का कैप्टन बनाना होता है, और ग्रुप कैप्टन को कैप पहननी होती है, तो कैप तो हम लाए नहीं, लेकिन जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं है वो कैप्टन रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको ग्रुप कैप्टन कौन है,
व्हाइट कैप जो है उसका अर्थ है सूचना, ठीक है वो आप बता दो, व्हाइट कैप अर्थात सूचना एक, दूसरा है उसके बाद में येलो कैप, येलो जो है उसका अर्थ है पॉजिटिव, मतलब जो परिस्थिति आपको दी जाएगी उसमें क्या क्या पॉजिटिव है वो सोचना है, फिर उसके बाद में है ब्लैक कैप, ब्लैक कैप अर्थात उसमें डिफिकल्टीज क्या क्या है, शिल्पा बेन आप इधर आ जाओ 3 नंबर में, ब्लैक कैप अर्थात जो परिस्थिति दी जाएगी उसमें क्या क्या पॉसिबल डिफिकल्टीज आ सकती है या निगेटिव एस्पेक्ट्स कहो या चैलेंज है वो सब है ब्लैक कैप। उसके बाद में है ग्रीन कैप। ग्रीन कैप अर्थात क्या क्या रचनात्मकता नवीनता उसमें आप कर सकते हो उसके बारे में बताना है, वो है ग्रीन कैप। ग्रीन अर्थात रचनात्मकता, ऐसे आप समझ लो। उसके बाद में है रेड कैप। रेड अर्थात इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, उसमें आप क्या क्या डाल सकते हो। और लास्ट है ब्लू। ब्लू अर्थात एक्शन प्लान। तो ये छह प्रकार की कैप्स है। इन छह कैप्स का आप लोगों को ये लोग परिस्थिति देंगे अभी सुशील भाई। उस परिस्थिति में आपको सारी पांचों छह के छह कैप इंक्लूड करनी है। पहले सूचना तो ये लोग दे देंगे आपको जो परिस्थिति है, उसके बाद में पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट, उसके बाद में उसका इमोशंस क्या क्या है, और उसके बाद में उसका रचनात्मकता क्या क्या है, और एक्शन प्लान। इसकी आपको एक स्किट बनानी है। स्किट अर्थात प्ले करके दिखाना है। तो अभी आपको सबसे पहले पहला ग्रुप है उनको परिस्थिति दी जा रही है।
ये आपको जो पेपर दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कलर प्रिंट है। तो फर्स्ट वाली है व्हाइट कैप है, जैसे सचिन भाई ने बताया। व्हाइट कैप अर्थात इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी डाटा दिया जाएगा, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और दे रहे हैं, तो अगर समझिए एक्सीडेंट हो जाता है, ये आपके पास केवल डाटा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे। आपके पास केवल इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी का आपके रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपके पास केवल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे। सेकंड वाली जो है रेड कैप है, वो जो है आपके इमोशंस, कैसे इमोशंस या फीलिंग्स आपके मन में आती है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस प्रकार से आप सोचते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला है ब्लैक है। ब्लैक माना अगर आप कितना निगेटिव सोचते हैं। एक्चुअली इसमें जो बताया गया है कि ब्लैक कैप जो है ज्यादा समय नहीं पहननी है, 30 सेकंड से ज्यादा। 30 सेकंड से ज्यादा माना बोलने का भाव ये है कि ज्यादा नहीं सोचना है किसी भी परिस्थिति के बारे में। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी पेपर या परिस्थिति आती है तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। तो आप 1 सेकंड में लगा रहे, 1 मिनट में लगा रहे, वो आपके ऊपर है। तो ये थर्ड हो गई ब्लैक कैप। उसके बाद है फोर्थ वाली जो है येल्लो कैप। येल्लो कैप माना आप पॉजिटिव वे में किस प्रकार से उस परिस्थिति को ले रहे हैं, किस प्रकार से सोच रहे हैं। पांचवा जो है ग्रीन कैप। ग्रीन कैप है अर्थात क्रिएटिविटी, आप अपने जो चिंतन में किस प्रकार की क्रिएटिविटी ला रहे हैं, नया आइडियाज कैसे ला रहे हैं। और उसके बाद जो है सिक्स जो है ब्लू। ब्लू अर्थात आप एक्शन कैसे कर रहे हैं, प्लान उसके ऊपर कैसे कर रहे हैं। तो अभी आपको सुशील भाई जो चार अलग अलग ग्रुप बने हैं, हर एक ग्रुप के लिए परिस्थितियां बताएंगे और उसके हिसाब से आपको जो कैप्स दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसके हिसाब से सोच के आपको 10 मिनट 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद में हर एक को यहाँ पे एक्ट करके भी बताना है, प्ले करके, कि आपने किस प्रकार से उस परिस्थिति के बारे में सोचा और किस प्रकार से उसके ऊपर एक्शन लिया। ठीक है, ओम शांति।
तो अभी ग्रुप नंबर वन परिस्थिति, एक नंबर एक ग्रुप है, सभी सुनेंगे। वैसे एक नंबर को ग्रुप परिस्थिति दी जा रही है कि राज्य दरबार लगी हुई है, अचानक विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि हमारा एक खास मंत्री पड़ोसी दुश्मन के साथ मिल गया है और यहाँ की सारी गुप्त जानकारी उसने दुश्मन को दे दी है। अभी आपको ये समाचार मिल गया है, अभी आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, फ्यूचर के क्या प्लानिंग बनाएंगे और ये जो सिक्स हेड्स है इसको कैसे उपयोग करेंगे, ये आपको पांच मिनट इसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद प्ले करना है। प्ले कितने देर करेगा, 10 मिनट का प्ले रहेगा,
10 मिनट सोचना है और 4-5 मिनट में प्ले करना है।
अच्छा, 10 मिनट सोचना है, ठीक है। तो ये आपने सुन लिया,
ये जो मुरली में बाबा ने बताया हुआ है कि राज्य दरबारी की आप
धोखा तो नहीं देती,
धोखा तो नहीं देती कोई कर्मेंद्री, आप प्रजा मतलब दरबार लगाते हो या नहीं लगाते हो, तो उस पर से ये पॉइंट लिया हुआ है। जैसे सुशील भाई ने बताया कि आपको मालूम पड़ रहा है, आप जैसे राजा हो और आपको मालूम पड़ रहा है कि कोई मंत्री जो है आपका खास मंत्री ट्रेटर बन गया, वो पड़ोसी देश के साथ में मतलब इसके साथ में जाके मिल गया है, तो उस परिस्थिति में आप क्या सोचोगे, किस प्रकार से आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है सिक्स सेट को यूज करके।
अभी ग्रुप नंबर दो, इधर मेरी तरफ देखो सभी। ये दो नंबर ग्रुप है, यूथ कुमार ग्रुप है। इसमें एक कुमार है जो लंबे समय से ज्ञान में चल रहा था, अचानक उसके मन को पुरानी दुनिया के ख्याल आने लगे उसके मन में और वो पुरानी दुनिया में जाने की पूरी तैयारी में है। बस गया कि गया, माया अजगर के पेट में जाने की लगभग पूरी तैयारी हो गई है। अब आपको उसे कैसे बचाना है, आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, क्या जो आपको सूचना मिली कैसे निर्णय लेंगे और कैसे उसको बचाएंगे। तीसरा ग्रुप कुमारियों से, तीसरे ग्रुप वाला एक्टिव हो जाओ थोड़ा। तीसरा ग्रुप है एक कुमारी ज्ञान में जो कि नौकरी भी करती है। अब वो बाबा के यज्ञ में समर्पित होना चाहती है, लेकिन उसके मन में दूसरों की परिस्थितियों को देखते हुए दुविधा है कि समर्पित हों या नहीं हों, या अपना नौकरी धंधा करते रहूं। तो अभी आप कैसे उसको समर्पित कराएंगे? उसको सारी परिस्थितियां भी दिखाई दे रही है, यज्ञ में समर्पित होने उसकी मदद कैसे करेंगे उसकी, उसके बारे में एक्शन प्लान जो भी है आपको ये 6 चीजें अप्लाई करनी है। चौथा ग्रुप पीछे वाले हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, तो ये है एक बीमारी से त्रस्त एक बीके सोल है और जो यज्ञ में बहुत सेवा करता है, समय आने पर सबके काम आता है। अब उसे अचानक बीमारी ने घेर लिया है, कहीं से कोई भी सहयोग भी नहीं मिल रहा है, मन गमगीन अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अप्राप्ति का अनुभव हो रहा है, बाबा से संबंध में नहीं जुट पा रहे हैं, ईश्वर मदद की अनुभूति भी कम हो रही है। अब इस परिस्थिति में आप उस बीमार जो है बीके उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा, कैसे उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कैसे उसको बचाएंगे? तो ये भी आप 5-5 मिनट आपको सोचना है, 10 मिनट आपको सोचना है और फिर 5-5 मिनट का ड्रामा यहाँ प्ले करके दिखाना है। तो अभी आपका टाइम शुरू होता है अब से स्टार्ट। मिलकर करेंगे डिस्कशन।
ओम शांति। ये जो स्किट ड्रामा प्ले करेंगे उसमें हर एक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो लोग ही कर रहे हैं और बाकी के लेक्चर वाले ऑडियंस बन के बैठे हुए। एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं हर किसी कोई सुन ही नहीं रहा है। ओम शांति। ग्रुप नंबर वन वाले कौन है? ग्रुप नंबर वन अपना नाम सुन ले। आपका नाम है बेफिक्र बादशाह। हाँ, बेफिक्र बादशाह ग्रुप नंबर वन का नाम है। हाँ, उनका टाइम ही नहीं है। ग्रुप नंबर सेकंड वाले कौन है? आपके ग्रुप का नाम है बेगमपुर के बादशाह। ग्रुप नंबर थर्ड वाले कौन है? हाँ, टाइम ही नहीं है। ग्रुप नंबर थर्ड वाले आपका नाम है बिन कौड़ी बादशाह। आपके ग्रुप का नाम है बिन कौड़ी बादशाह ग्रुप नंबर थर्ड। और ग्रुप नंबर फोर्थ पीछे वाले बेपरवाह बादशाह।
लोग आवाज कम करो, आपका आवाज ज्यादा हो रहा है।
बस अभी 30 सेकंड है,
नहीं काम करो, 2 मिनट बाकी
है, 2 मिनट बाकी खाली अभी, फटाफट करो।
केवल 2 मिनट बाकी है, हो गया, रेडी हो गए क्या? हाँ तो भी रुक जाइए, फिर जिसका हो गया रुक जाइए, बाकी के लोगों के लिए। सब लोग अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। टाइम अप हो गया। ग्रुप नंबर,
अपने अपने ग्रुप का नंबर याद रखना, और अभी थोड़ा अपने अपने सीट पर सेट हो जाओ। हाँ, अभी पहले बेगमपुर के बादशाह नंबर वन ग्रुप उपस्थित हो, बेगमपुर के बादशाह एक नंबर वाले बैठे रहे, वो बाकी तीन जो है, अभी आप अपने स्थान पर चले जाओ, दूसरे ऊपर चले, केवल एक नंबर वाले बैठे रहिए,
ग्रुप नंबर एक वाले नीचे ही बैठे रहिए, क्योंकि आपको अभी प्ले करके दिखाना है और आपने क्या क्या सोचा है उस परिस्थिति के बारे में वो आपको एक्सप्लेन करना है स्किट के रूप में, प्ले के रूप में। तो ग्रुप नंबर एक वाले नीचे ही बैठे रहिए, बाकी के ग्रुप नंबर वाले जिसको जहां जगह मिलती वहां बैठ जाइए। चार नंबर ग्रुप वाले पूरा कीजिए, आपने 2 मिनट पहले ही कहा था हमारा हो गया, अभी कहां से बाकी। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले आ जाइए, ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले, ये माइक आपको दिया जा रहा है, आपने किस किस उस परिस्थिति के बारे में वो जो,
हाँ जी, ग्रुप नंबर वन जो परिस्थिति मिली थी बेगमपुर के बादशाह नंबर वन ग्रुप, तो इन बेफिक्र बादशाह, तो बेफिक्र बादशाह को जो परिस्थिति दी गई थी कि राज्य कारोबार लगा हुआ है और कोई एक मंत्री ने धोखा दे दिया है और वो पड़ोसी दुश्मन के साथ मिल गया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब उसको बचाने के लिए या फ्यूचर के लिए क्या रणनीति आपने तय की है ताकि सुरक्षा बनी रहे, अब ये सारा आप प्ले करके दिखाएंगे 5 मिनट में, अभी से आपका शुरू होता है टाइम। अब जी जिसको माइक की जरूरत है वो तुरंत एक दो को सप्लाई करते रहेंगे, ऐसा नहीं माइक खुद ही पकड़, जिसकी टर्न आएगी उसको तुरंत माइक दे देना।
आप वो वाला लो ना।
ऑप्शन हेलो, जो राज्य पर चढ़ाई होने वाला है ये तो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल चुका है, जो खुद मेरा भाई था उससे मिल चुका है, उसके लिए हाथों हाथ क्या करना होगा आपको फटोफट उस बात के लिए अलर्ट होना होगा, नहीं तो चढ़ाई हो जाएगी आपके राज्य ऊपर, अपने राज्य ऊपर।
महाराज सारी जानकारी मान सिंह ने दी है अकबर राजा को।
अच्छा,
अभी हमको तैयारी करनी है उसके लिए।
तो तैयारी जो भी होगा आपको फटोफट करके इसकी रिपोर्ट अपने पास पे आनी चाहिए।
ठीक है महाराज, हम अपने सैनिक को तैयार करते हैं। आ जाओ आप, तो मान सिंह आप अकबर आप इधर आ जाओ। हाँ इधर मतलब, तो हम अपने अपने तैयारी रखते हैं और दुश्मन पर जैसे दुश्मन आक्रमण करेगा तो हम अपने उसको दुश्मन पर आक्रमण करेंगे। आप मान सिंह में, हाँ जी मान सिंह अपना रोल पहले करो, मान सिंह का आप अकबर हैं, आप इधर जाइए, ये आपके महाराजा अकबर।
अब मैं इनको ग्रुप में मिल गया हूँ, मुझे आपसे कोई नाता नहीं है, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, अब मैं इनों के साथ हूँ।
अच्छा, अभी तो जो परिस्थिति और समस्या आई है उसको निपट लेंगे, बाद में आपको भी देख लेंगे हम जो भी होगा।
महाराज आप आज्ञा दें हम दुश्मनों का आक्रमण करें।
हाँ, सब प्रजा की हथियार गोला बारूद सब तैयार है।
हाँ महाराज।
हाँ तो फिर आप अटैक कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको इतराज नहीं।
ठीक,
लेकिन आप लोग अवश्य हार जाएंगे, मैंने बहुत गंभीर इन्फॉर्मेशन अकबर बादशाह को दे दी है, आप अवश्य हार जाएंगे, आप अपना देश गवा देंगे, इसलिए अच्छा है आप अपनी गद्दी मुझे दे दो।
अच्छा, अभी हम यही सोचते हैं कि आपको गद्दी बाद में मिलेगा, अभी जो भी आपने गलती करके उन सब से मिल गए हैं, इसके लिए आपकी जो इच्छा तमन्ना हम पूरा करेंगे, अभी आप भाई के साथ में भाई के जैसे व्यवहार करो, आगे देखा जाएगा, फिर आपको गद्दी मिलना ही है।
महाराज वो उन्होंने पीछे का रास्ता भी बता दिया, तो उस पर है ना कुछ हमने अपने सैनिक खड़े करते हैं, और जो महाराज आपको थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, आप अपनी थोड़ा देखना।
अच्छा ठीक है, उस रास्ते के लिए आप उसको जो सुल्तान सिंह है उसको खड़ा कर दो, उस एरिया में वो मायूर है, उस बातों के लिए वो बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, इसलिए उसको वहां पर आप खड़ा कर सकते हैं।
महाराज युद्ध के मैदान में अभी चलते हैं, उनकी सेना तैयार है, हमारी भी सेना चलते हैं।
अच्छा ठीक,
तो आप
अच्छा इसमें हमने दूसरा भी बोलिए।
देखो इतना जरूरी सारी यहाँ पर प्लान बनी हुई थी और यही टाइम था क्या उसको अटैक करने का, ये भाई हुआ जो इतनी इन्फॉर्मेशन दूसरे राजा को दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जो से नहीं करना है हो से काम लेना है और स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है, और हम अपना प्लान नया बना लेंगे, न्यूनेस में लाएंगे।
पहले हमारे राज्य में बहुत बॉसीनेस थी, राजा जो था ना बहुत ये करता था, गुस्सा करता था, अभी वो ठीक हो गया, अभी वो कोमल हो गया है।
लेकिन मेरे राजगद्दी का भी हक है और मुझे वो मिलना ही चाहिए, किसी भी सूरत से और मैं लेके ही रहूंगा।
लेकिन भाई साहब हमको ये अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि ये वक्त नहीं है आपस में लड़ने का, हमें तो अकबर को जवाब देना है, हमें उनके सैन्य पे अटैक करना है, आपसी मतभेद बाजू में रख के हमें अभी जो निर्णय लेना है वो तुरंत लेना है और किसी की भी हानि ना हो इस तरह से निर्णय लेना है।
महाराज मैं आपको एक सलाह देता हूँ, देखो भाई है कोई बात नहीं, उसने आपके साथ जैसा किया कुछ भी किया, लेकिन उसको किसी तरह से आप खुश करके अपने पास मिलाओ और इसका समाधान करो ताकि हम दोबारा एक हो जाएं।
ठीक है
महाराज, उनकी सैनिक तैयार हैं और अभी हमें हमारे सैनिक भी कम है, उनके सैनिक ज्यादा भी है, पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो युद्ध के लिए जाना पड़ेगा महाराज।
तो ठीक है, अभी क्या है कि जल्दीबाजी में कोई भी कार्य करते हैं उसमें नुकसान ही बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए पहले सोचे समझे फिर प्लान बना के क्योंकि हम जब तक उस झंडी नहीं लड़ाएंगे तब तक अटैक नहीं हो सकता है, तो कुछ समय मार्जिन लेकर के हम इसके ऊपर फिर से अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ में अटैक कर सकते हैं।
हमारी सेना 50 लाख की है।
ओके, ओम शांति।
इमोशनल व्हाइट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मैंने बता आपको मान सिंह की इन्फॉर्मेशन आपके मंत्री ने दी आपको।
अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने घबराहट को छोड़ करके जैसे भी करके कैसे भी करके इसके ऊपर हम अच्छी रीति से तैयारी होना पड़ेगा फेस करने के लिए। हमने अंदर से ही हिम्मत हारी नहीं कि इसको हम जैसे भी करके विजयी बन के रहेंगे। अच्छा,
ऐसा क्यों किया उसने, ये नहीं करना चाहिए था उसने, ये सारी बातें हर एक को एक-एक पॉइंट
मैंने बताया था इनको, पर भी मत है इनको कहानी नहीं पता ना।
अभी आई पूरा हो गया। ग्रीन माने
क्रिएटिविटी, क्या नवीन था, आपने कौन सी नई योजना बनाई इस पर?
जो पहले से जो हमने प्लान टोटल बनाए गए थे उसको टोटल घुमा करके फिरा करके थोड़ा सा जो से भी करके होगा उसको।
हाँ नहीं, अच्छा। वो तो मैंने बताया, हाँ। वो ट्रेटर मानसिंह आएगा नहीं सामने। इनको मैंने ना छुपके मिल गया, उनको अकबर के पास मिल गया था वो, तो उनकी जो अकबर के साथ तो मैंने बोला था आप इन मानसिंह कहाँ है?
ठीक,
चलो सेकेंड नंबर।
दीदी आपके पास ना, आप बोलेंगे ना मेरे भाई।
इन्फॉर्मेशन मेरा तो भी
है। इन्फॉर्मेशन में
एक ग्रुप नंबर 2 है बेगमपुर के बादशाह। अभी इनका जो परिस्थिति है, एक कुमार है लंबे समय से ज्ञान में चल रहा था, अचानक उसके मन को पुरानी दुनिया को छोड़ने की बात पुरानी दुनिया में जाने की बात आ गई और वो जाने वाला बस गया कि गया, माया अजगर के पेट में जाने वाला है। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इस परिस्थिति के ऊपर इनको 6 बातें लागू करके इसको कैसे बचाना है, क्या एक्शन प्लान है, क्या इनकी फीलिंग है, इमोशन है, क्रिएटिव है, क्या रणनीति है, वो बताएंगे प्ले के माध्यम से।
अरे शॉकिंग, क्या हो गया है, कितनी दुखद बात है। इतना दिन मधुबन में रह के सुना आपने क्या हुआ मुझे ना? हाँ, प्रभाकर भाई ने बताया, वो अपना अंगद है ना, अंगद वो जा रहा है और बोल रहा है कि कारण भी उसका कुछ इतना ठीक नहीं लग रहा है। बोल रहा है माँ बीमार है, अभी अभी तो ठीक थी, मैं भी होके आया था और मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लग रहा है।
अभी देखो बाबा हमसे या निमित्त आत्माएं हमसे कितनी उम्मीदें रखती हैं और इस मोड पे आके कोई बाबा को छोड़े कई बार बहुत सोचना पड़ता है। प्लीज बाबा आप उसके लिए कुछ ऐसा करो। और पता नहीं कितनी मतलब उस आत्मा ने तो सेवा जमा की है, तो ऐसा मन में विचार आना तो बहुत ज्यादा अपने आप में हमें बहुत ऐसा लग रहा है। हम सभी मिलके उस आत्मा के निमित्त कुछ करेंगे जिससे वो जल्दी बाबा की जैसा है, उसका नाम है अंगद, वापस वो अंगद हो जाए। बाकी है तो बहुत डेंजर न्यूज, क्योंकि कोई भी आत्मा जब बाबा को छोड़ दिए तो अच्छा नहीं लगता। जो भी ये परिवार है ये बढ़ता जाए तो और अच्छा है। तो अभी हम अंगद
चिमन भाई, मैंने वो बात जो है ना आपको पता चली, अंगद भाई वाले वो जा रहा है, मैंने दीदी को सुनाया, अमृता दीदी को, वो तो बहुत भावुक हो गई, उनके आंखों से पानी आने लगा, तो फीलिंग में आ गई। तो आपको क्या लगता है चिमन भाई?
मुझे तो मैंने तो देखा कभी उसको अमृत वेले कभी नहीं देखा, न कभी मुरली में देखा। सेवा सेवा सेवा, अरे एक सेवा से कुछ थोड़ी होता है। बाबा ने पहले क्या बोला, पहले ज्ञान फिर योग, जब ज्ञान योग होगा तो धारणा होगी। तो पर चिंतन में लगा रहता था हमेशा, तो ये कैसे होगा। हाँ, तो इसलिए उसको जाना अच्छा होता है, जब जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। हाँ,
पॉजिटिव। भाई भले ही वो अमृत वेला मिस किया करता था कभी कभी, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी थी उसमें। क्वालिटी ये थी कि सेवा में एकदम बिल्कुल पंक्चुअल था। ऐसा भी समय आता, एक बार ऐसा भी मुझे याद है उसके साथ कि वो किचन में की सेवा करते करते खाना खत्म हो गया, लेकिन इतना पॉजिटिव था, बाबा से बोला कि चलो इसी बहाने मेरा वेट तो आज लूज होगा, देखो बाबा के कितना निमित बच्चा। और उसका सबसे बढ़िया, वो दूसरे को इनकरेज करता था, नहीं नहीं अमृत बोला, भले वो नहीं जाता था लेकिन दूसरे को कभी हमेशा पुश करता था, तुम जरूर जाओ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई था। और उसका सबसे बढ़िया गाना मुझे अभी भी याद है, वो हमेशा मतलब भावुक हो करके वो गाना गाता था। वो मुझे लाइन, एक लाइन में मैं गा के बताता हूँ उसका। तेरी नजर में रहे ओ बाबा, सोचो कि मतलब इतना इतना उसके पास फीलिंग था। तो बाबा भले थोड़ी सी अभी हिल रहा है लेकिन हम लोग उसको वापस ले आएंगे।
हाँ, सचमुच उसके निगेटिव बातों को हमें इग्नोर करना होगा। सचमुच कितनी अच्छी क्वालिटीज थी उनमें, है ना दीदी। रुचा दीदी, अब क्या करना चाहिए कि वो मेरा भाई जाए नहीं यहाँ से, क्या करना चाहिए।
हाँ, तो इन्होंने जैसे बताया कि एक तो वो अमृत वेला मिस करते हैं और मुरली पे नहीं जाते, तो ये दोनों तो बहुत जरूरी हैं हमें सस्टेन करने के लिए और पावर्स देने के लिए बाबा से। तो हम मेक श्योर करेंगे कि सिर्फ वो दूसरों को एनकरेज ना करें, हम थोड़ा उनको भी पुश करके ड्रैग करके। तो एक तो इसमें हमें फटाफट से कुछ करना पड़ेगा कि अमृत वेला और मुरली उनकी एकदम पंक्चुअल हो जाए।
हाँ दीदी, ये सब करने के लिए तो बहुत उमंग उत्साह चाहिए, और ऐसा उमंग उत्साह उसमें कौन भरेगा। हम उसे ऐसा क्या करें वो जो उस सोचना ही छोड़ दे उस विचार को।
क्यों ना हम उसे दादी के पास ले जाएं।
हाँ, गुड आइडिया, वो तो दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब ऐसे समय में हमें दादी से कौन मिलाएगा।
करेंगे और दादी के पास उनको अर्जेंटली लेके जाएंगे ताकि उनको इंस्टेंट पावर मिले। और दूसरा और दूसरे और भी चीजें हैं, मतलब कि ऐसा दोबारा और भाइयों के साथ ना हो तो हमें।
तो दीदी, मैं अंगद भाई को लेके आता हूँ, हम अभी निकलेंगे।
तो हमें एक्चुअली ये थोड़ा सा ओपन होना चाहिए इन चीजों के लिए, ताकि अगर और भी भाई ऐसी स्थिति से जा रहे हैं तो हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए जिनमें वो ओपनली आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, ताकि ये हम उनको सस्टेन करने में हेल्प कर सकें।
अंगद, अरे अंगद भाई इधर आओ ना। अरे दादी आई है और सभी मधुबन वालों को टोली भी देंगे, तो आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे चलो, दादी बुला रही है।
दादी बुला रहे? सचमुच दादी मुझे बुला रहे? सचमुच
दादी बोल रही है, वो जो गीत गाने वाला भाई है ना उसको बुलाओ। दादी गीत गाने वाले भाई को याद कर रही है, आपको ही बुला रही है। चलो, चलो।
नहीं, मुझे लग रहा है आप मुझे ऐसे ही लेके जा रहे हैं।
नहीं भाई, हम आपका मजाक क्यों करेंगे।
सचमुच दादी मुझे बुला रहे हैं। ओम शांति दादी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ, बहुत देर से देखा नहीं आपको, किधर थे।
जी दादी, यहाँ पर था मैंने, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि माँ का तबीयत खराब है तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा जाने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था जाऊंगा वहाँ पे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी।
तो सचमुच दादी, आज आप मुझे आपसे जो प्यार का अनुभव मिला, मैं दिल खुल के आपको बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये यज्ञ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे प्यार का कमी है और मेरा पुरानी दुनिया के साथ धीरे धीरे जो लगाव बढ़ रहा था। तो क्या है कि यहाँ सेवा में इतना व्यस्त होते होते
योग और ज्ञान का जो प्रभाव मेरे से कम हो गया था, लेकिन आप तो आज दृष्टि से मुझे निहाल कर दिए। सचमुच लग रहा है कि आपके तन में जैसे बाबा का मुझे आभास मिल रहा है। और दादी, मैं आज से पक्का निश्चय कर रहा हूँ कि यज्ञ को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, और हमेशा मैं पहले मेरा सेवा के साथ साथ ज्ञान और योग इतना करूंगा, मनन चिंतन जरूर करूंगा और अमृत बल इतना पावर करूंगा। तो जैसे नाम अंगद रखा है तो मुझे कोई भी हिला नहीं सकता है। जरूर दादी, ये आपका जो प्यार मिला है इसका मैं जरूर सबूत दूंगा। ओम सर। तो एक्चुअली ऐसे था कि माँ का तो थोड़ा बहुत था, लेकिन वो हो भी सकता है, मैं जाके उनको ठीक करके आ जाऊंगा। दूसरा भाई है।
अभी तीसरा ग्रुप है बिन कौड़ी बादशाह, कुमारियों से प्रसिद्ध है, कुमारी ज्ञान में है जो नौकरी भी करती है। अब वो बाबा के यज्ञ में समर्पित होना चाहती है, लेकिन उसके मन में दूसरों को देख के विचार आते हैं, दुविधा है कि समर्पित हो जाऊं या नहीं हो जाऊं। तो इसके लिए आप इसको कैसे हैंडल करेंगे इस परिस्थिति को? बेफिक्र बिन कौड़ी बादशाह तीसरा नंबर ग्रुप।
चलो आ जाओ जल्दी जल्दी सब आ जाओ।
दीदी को दे दीजिए, दो तीन लोग बैठ जाएंगे, योग में बैठ
जाएंगे। ये ऊपर चले जाओ
आप, दूसरे सेंटर पर है।
चलो जल्दी
स्टार्ट। चलो 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 सेंटर पर। मुरली क्लास चल रहा है?
मुरली क्लास नहीं,
योग चल रहा है।
जी दीदी, ओम शांति।
ओम शांति। हीना बहन कैसे हो?
हाँ मैं ठीक हूँ।
बहुत दिनों के बाद आए, क्यों?
हाँ बहुत सारे पेशेंट्स थे ना हॉस्पिटल में, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था आने के लिए।
कोई बात नहीं, अब योग में बैठ जाओ।
हाँ जी।
हरि भाई एक मिनट इधर आओ। जो मेगा प्रोग्राम के लिए बताया था उसमें क्या क्या प्लानिंग्स कर लिया है आपको बताया था ना?
जी दीदी।
हाँ तो कर लिया?
नहीं दीदी।
तो जाओ फिर, जाओ जाओ।
ये दीदी भी बार बार जब भी मैं योग में बैठता हूँ हमेशा सेवा की ही बातें करती है। कभी ना तो योग करने देती है, ना तो कभी मुरली सुनने देती है, हमेशा टाइम सेवा सेवा सेवा। ये भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो घर में रहते, वो ठीक था।
अरे पापा, मैं तो सोच रही थी सेंटर पर समर्पित हो जाओ तो ये पेशेंट से भी छुटकारा मिल जाएगा, हॉस्पिटल से भी, और यहाँ देख रही हूँ तो दीदी तो योग में से ही उठा रही है उसको, अब मैं क्या करूँ? सेकंड सीन सेकंड। दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे सेंटर पर कोई प्रोग्राम है और हम वहाँ पे जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ की बहन जी कैसी होंगी और यहाँ के भाई बहनों के साथ क्या व्यवहार होगा। बाबा मुझे कुछ अच्छी सीन दिखा दे यहाँ पर।
क्या क्या बात है, आप क्यों परेशान दिख रहे हैं ऐसे?
ओम शांति बहन जी।
ओम शांति।
मैं डॉक्टर हीना।
अच्छा, बहुत अच्छा।
मैं शिल्पा बहन जी के सेंटर से हूँ।
ओके।
मैं चाहती थी कि मैं समर्पित हो जाऊं, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसे ऐसे देखा वहाँ पे कि मन ही नहीं कर रहा समर्पित होने का।
अरे ऐसे तो होता ही रहता है, हमें बाबा ने क्या कहा है विशेषताएं देखनी है। अगर हम अवगुण देखेंगे तो हम अवगुण ही धारण करेंगे। आप गुण देखो, आप अपने गुणों पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी स्थिति को खराब मत करो। परिस्थितियां तो आती रहेगी। आपने कभी देखा है कि बिना तकलीफें सहन करके किसी ने कुछ हासिल किया हो? तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, त्याग करेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा।
दीदी मैं चाहती हूँ कि यहाँ भाई बहनों से मैं मिलूँ और उनका अनुभव सुनूँ।
हाँ बैठिए सुनिए।
अरे दीदी जी थोड़ा बैठ के बात कीजिए ना, थकी हुई है पहले से। हेलो हिना दीदी, ओम शांति।
ओम शांति आशीष भाई जी,
कैसे हैं आप?
हाँ मैं बहुत बढ़िया,
बहुत खुशी हो रही कि आप हमारे सेंटर पे आए हैं। तबियत तो आपका ठीक ही होगा क्योंकि पेशेंट को ठीक करने वाले हैं।
हाँ जी लेकिन तो, मन अंदर से ठीक नहीं है।
ऐसी क्या बात है दीदी?
ऐसे कुछ कुछ देख लिया, मन कर रहा था कि आप लोगों से आके मिलूं क्योंकि सुना है कि ये सेंटर अच्छा है। वैसे तो बाहर से सब कुछ अच्छा ही दिखता है लेकिन कुछ कुछ सेंटर पर देख लिया जिससे मन नहीं कर रहा कि सेंटर भी आओ अभी।
आखिर हुआ क्या, थोड़ा क्लियर करके बताइए ना।
देखिए ना, मैंने सोचा कि हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाए और सेंटर पर आ जाऊं हमेशा के लिए, लेकिन देखा तो भाई योग में बैठा और सूक्ष्म वतन तक पहुंचा और बहन जी उसको नीचे लेके आ गई और कहती है कि मेगा प्रोग्राम की तैयारी करो। कभी देखती हूँ तो बहन जी अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही थी, चिल्ला अच्छा? रही थी और मेरी पोस्ट पोजिशन देख के मुझसे अच्छे से बात कर रही थी अच्छा? तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
लेकिन क्या है डॉक्टर हिना दीदी कि अच्छे मार्ग पर चलते हैं ना, तो उसको मना और आगे जाने के लिए जो बीच में परिस्थिति बिघन आती, जैसे महात्मा बुद्ध को, महात्मा गांधी को, जो बड़े बड़े लोग हुआ है, मीराबाई को, लक्ष्मीबाई को, इन सबको तो पैर खींचने वाले भी थे ना, इस वजह से वहां पे नहीं रुके। जहां पर अभी रुक गए हैं कंफ्यूज हो कि मैं समर्पित हूं कि नौकरी की नौकरी ही करूं, वहां पे नहीं रुके, वो आगे चले गए। तो हम इन छोटी छोटी बात में हमें नहीं देखना है। हमारे महेंद्र भाई जी बहुत अनुभवी, पूछ सकते हैं आप इनसे।
हाँ
इनके बच्ची भी सेंटर पे है।
अच्छा, इनके चेहरे से ही पता चल रहा है कितने खुश है।
ओम शांति। बहन जी आप कितने लकीएस्ट आप हैं, क्योंकि लकीएस्ट बाप के बच्चे हैं आप। तो ऐसे पढ़े लिखे भी हैं, अनुभवी हैं, ऐसे ही ज्ञान में नहीं आए हैं, भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं। कभी कभी आ जाता है पर चिंतन की बात सुबह आ जाते हैं, पर दर्शन की बात सुबह आ जाते हैं, जिससे पतन होता है। तो आप तो समझदार हैं ना, सब कुछ तो समझते हैं ना, तो इसलिए सब कुछ समझते भी हैं। और ये अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म में आपको भगवान की परिचय मिल गया है, अपने आप को परिचय मिल गया है, समय को पहचान हो गया है। इसलिए बहन जी ये सब समझ करके हमें आगे दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है और समय को समझना है। इसलिए आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सबका शुभकामना है आपके प्रति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी जी, मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ, बताया आपको? हाँ 10 साल से इस सेंटर पे हूँ। मैं तो खुशी से मौत से ही रह रहा हूँ।
10 साल कैसे रह गए आप इधर?
मैं खुशी मौत से ही रह रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ दुख नहीं लगता। हमारी दीदी भी बहुत अच्छी पालना
आपको
देती।
योग करने का टाइम मिल जाता है?
हाँ मिलता है मुझे, अमृत वेले भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, दोपहर में भी योग करने का टाइम मिलता है।
अच्छा,
माँ जैसी पालना देती है हमारी दीदी जी। और थोड़ी बहुत हिसाब किताब आती है तो मैं उसको अपना पूर्व जन्म का खाता समझ के उसको खुशी खुशी से चुकता करता हूँ। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आप रह के देखिए, रहने के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर जाकर के हम दूसरों को देख के पता नहीं चलता। सागर की गहराई में जाएंगे ना तो मोती चुक सकते हैं। इसलिए आपको दुख नहीं लेनी, इसमें खुशी से एक तक से उसमें सुहा होना चाहिए होता।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक्शन प्लान, अब तो मैं जल्दी समर्पित हो जाऊंगी, फटाफट रेजिग्नेशन दे देती हूँ हॉस्पिटल से। और
थैंक यू हिना दीदी, लेकिन आप ना ऐसे कीजिएगा हमारे सेंटर पे समर्पित होइएगा। अगर कोई बीमार होगा ना तो छोटा मोटा तो हम आपसे मदद हाँ ले सकते हैं।
हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति हिना बहन, कैसे हैं आप?
हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ठीक हूँ।
देखो हिना बहन, ये जो भी आप परिस्थिति बाहर से देखते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं है। हम जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, जो पहले से है, उनको समझते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत काम देते हैं, क्योंकि और भी नए नए बच्चों को हमें बाबा के बनाना है इसलिए। लेकिन जो नए आते हैं उनको हम अच्छी तरह से पालना भी देते हैं।
तो इसलिए आपको ये सब नहीं देखना है, आपको विश्वास रहना है कोई भी सेंटर हो लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से उसमें रहना, यही
हमारा जी दीदी।
थैंक यू।
ग्रुप नंबर चार बेप्रभाव आशा हाजिर हो।
परिस्थिति
है बी, एक बीमार भाई है, बीमारी से त्रस्त है, यज्ञ में बहुत सेवा करता है, समय आने पर सबके काम आता है, अब उसको बीमारी आ गई है, कहीं से उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई
बीमार
अप्राप्ति का अनुभव हो रहा है।
अब बाबा ओ बाबा
हमारा भाई,
मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे पैर को बहुत दर्द है, मेरे से भी उठना भी नहीं हो रहा है,
उसको देखो
मेरे को चलना भी नहीं हो रहा है, ओ बाबा मैं क्या करूं बाबा, ओ बाबा बहुत दर्द हो रहा है बाबा, ओ
ये हमारा भाई है, उसको अभी बहुत बीमार हो गया है और इतनी बीमारी है उसको एक सेकंड भी उसको गोली के बिना इंजेक्शन के बिना नहीं चलता है, और जब भी दो मिनट के लिए भी वो श्वास नहीं अच्छी तरह से ले सकता है। अभी हमको क्या करना है, क्योंकि ये हमारा भाई है, क्या करना है हमें, क्योंकि बहुत बीमार है, डॉक्टर के बहुत सारे डॉक्टर हमने बदली, अभी कौन सा अच्छा डॉक्टर है जिसके पास हम जाए, वो सब आप बता सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें क्योंकि बहुत ही बीमार है वो।
भैया जी कहाँ भाग रहे हो, ठहरिए, एक बात है मैं बताऊंगी। देखिए वो भाई जी को है ना बीमारी हो गए, हमको क्यों माथा मारने का, हमको क्यों माथा मारना है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको बता देंगे बस।
अरे वो बीमारी ऐसे है वो ठीक ही नहीं होती, मेरा एक चाचा है 25 साल से दर्द से रहा है और इसकी वजह नहीं कोई पाप होगा किया होगा जो भुगत रहा है, क्या करें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे रे बेचारा क्या करे,
बहुत
मेरे से तो चलना भी नहीं हो रहा है, बाबा की मुरली कैसी सुनूं, योग में भी जाना नहीं होता है, खड़ा भी हो नहीं सकता,
लेकिन भैया हम सब है ना आपकी हेल्प करेंगे और योग करेंगे सब कुछ,
थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा योग करते जाओ,
देखने आएंगे सब कुछ करेंगे।
अमित भाई, ये भाई साहब तो अपने ऐसे बोल रहे हैं कोई ठीक नहीं होगा, मगर ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अपन क्या है बाबा की याद में बैठेंगे उसके लिए कुछ योग करेंगे तो क्यों नहीं ठीक हो सकता है।
वो ठीक हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर अपने को डालना, हम तो बहुत बार बताएंगे उनको, लेकिन उनके अंदर जाना चाहिए, विल पावर उनकी होनी चाहिए पहले तो भाई, आपकी आपके आपको आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, आपको रोज एक सौ
खड़ा कैसे हो सकता हूँ इसके बारे में बताओ कि भाई चलकर मुरली सुनू मैं खड़ा कैसे हो सकता
आपको हूं? हम रोज आपको हम रोज मुरली सुनाने भी आएंगे, आपके लिए योग भी करेंगे, लेकिन खुद अपने अंदर आपको डालना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना है तो ही हो सकता है।
ठीक है मैं बाबा की याद करते जाऊंगा थोड़ा।
चलो अपन क्या करेंगे, सभी बैठ करके उसके लिए पॉजिटिव थॉट देंगे, उसके लिए योग करेंगे, बैठो थोड़े सभी सकाश देंगे।
सखाज के तो हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसमें नवीनता हम ये करेंगे कि हम सब मिलकर उनको पहले पॉजिटिव करेंगे, उनमें ऐसे बाबा की अव्यक्त वाणियों का, वरिष्ठ दादी दीदियों का ऐसे अनुभव सुनाएंगे जो पॉजिटिव हो जाए, जो चलने लगे, और उसमें हम नवीनता और एक बात करेंगे कि बाबा की याद में पानी थोड़ा कटोरी में रखकर बाबा से चार्ज करके उनको पिलाएंगे ताकि वो दवाई का काम करे उनका। हम सब मिलकर उनको सारी हेल्प करेंगे कि उनके कपड़े या कहेंगे भोजन है, हम अपने हाथ से बनाकर बाबा की याद में शक्तिशाली भोजन बनाकर खिलाएंगे क्योंकि वो बीमार है। ये भी एक सेवा हम उनकी करेंगे। और जो डॉक्टर उनको जो दवाई देते हैं वो दवाई भी पहले हम बाबा के पास रखेंगे और बाबा के पास रखकर उसमें शक्ति भरकर हम अपने हाथों से उनको दृष्टि देकर फिर वो दवाई भी उनको खिलाएंगे। इतना ही नहीं तो उनका भोजन का, फ्रूट का, दवाई का, हम सब मिलकर एक एक ऐसे हेल्प करेंगे कि उनको टाइम पर समय पर हमें दे सके। ये सब हम नवीनता करेंगे। और उसमें भी उनको ये खास पॉजिटिव करना है उनको कि ऐसे बीमारी वाले हजारों पेशेंट बाबा की याद में अच्छे हो गए, दादी दीदियों का अनुभव है, ये सारी बातें उनको सुनाएंगे और ऐसी मुरलियां भी निकालेंगे जो बाबा ने कहा है मुरलियों में कि आपको याद करने से एवर हेल्दी बनते, निरोगी बनते, रोग मुक्त हो जाते, बीमारी मुक्त हो जाते। ये सारी बातें उनको सुनाकर उनको पॉजिटिव कराकर, और हड्डियों का दर्द है तो बाबा से हम लाल किरणें शक्तियों के लेकर उनको देंगे तो हड्डियों में भी बल आएगा और वो चल सकेंगे और मुरली में आ सकेंगे। ये सारी नवीनता करेंगे।
एक्शन प्लान ये है, फर्स्ट एक्शन प्लान है कि इसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे जिससे डॉक्टर से सजेशन मिलेगी कि क्या क्या मेडिसिन हमको लेना है इनके लिए। दूसरी बात है कि हर एक रूटीन रहेगा, डेली रूटीन रहेगा जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनका कौन लेके जाएगा, जिससे और उसी टाइम पे साकाश देंगे जो और उनके बारे में जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए हैं और उनके बारे में जो उन्होंने खुद जो इतनी सारी सेवा जो की है, उनको जो सेवा जो उन्होंने की है उसके बारे में खुद उनको बताएंगे जिससे उनको उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और पॉजिटिविटी आएंगी। तो और तीसरा है कि सेंटर पे जो भी योग करेंगे उस योग के टाइम पे सबको उनको साकाश देंगे, इस साकाश से उनको और भी एनर्जी पावर मिलेंगे जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी।
ओम शांति। बीमारी तो इनको बहुत गहरी है लेकिन किसी कारण से इनका शरीर भी छूट जाता है, उसमें भी कोई बात नहीं है क्योंकि कहा गया है कि मृत्यु के बाद में जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु, इसलिए इनको घबराने की बात नहीं है। किसी कारण से इनका शरीर भी छूट जाता है तो फिर नया जन्म मिलेगा, इसलिए इनको घबराने की बात नहीं है। मैं तो बेपरवाह बादशाह हूँ। किसी बात की दिक्कत हो तो बेपरवाह बादशाह के पास में चले आइएगा, सब समस्या हल हो जाएगा। बाय बाय।
आपकी बातें तो सुनकर मेरे इसमें तो पावर आ गया थोड़ा, अभी पैरों में तो दर्द है लेकिन मन की मानसिकता अच्छी हो गई है तो मैं लकड़ी के बल से भी मैं मुरली सुनने आ जाऊंगा और मैं ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं बेपरवाह बादशाह हूं, अभी मुझे कोई डर नहीं है। भलाई पैर में दर्द है लेकिन वो भी मिट जाएगा, लेकिन मन से मैं अभी स्ट्रांग हूं।
हम सभी तैयार हैं ना, उनको हर प्रकार की मदद देंगे क्योंकि हमारा ही भाई है, हमारा ही परिवार का है, इसलिए हम कभी भी इसकी कोई भी सेवा अगर वो कहेंगे कि ये तो ये नहीं कहे उसके पहले से हम करेंगे ना सभी, हम अपने परिवार का समझेंगे ना और हम सब बाबा की याद से उनको ठीक कर ही देंगे।
सभी का थैंक्स।
तो ये जो चार ग्रुप में जो चार परिस्थितियों का निर्माण किया गया था तो इसमें कैसे कैसे सबने जो सिक्स थिंकिंग साइड्स है कैसे इसका उपयोग किया, ये हम जैसे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो ये परिस्थितियां हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आ जाती हैं, वो चाहे स्वयं के स्तर पर हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, तो हमको इन परिस्थितियों को कैसे अप्लाई करना है ये हमको एक देखने का बहुत अच्छा चांस मिला जो प्ले करके सबने बताया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो।